शांति। आप सभी मीठे बाबा के घर में डबल लक्ष्य लेकर आए हैं। पहला लक्ष्य है दादी जी को श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। श्रद्धा सुमन समर्पित अर्थात जैसे दादी ने पुरुषार्थ करके स्वयं को बाप समान बना लिया, ऐसे मुझ आत्मा को भी दादी जैसा पुरुषार्थ करके बाप समान बनना है। एक लक्ष्य लेकर ये आए, दूसरा लक्ष्य लेकर आए हैं कि बाबा के घर में हम चलकर भट्टी करेंगे। भट्टी का भी लक्ष्य यही है कि भट्टी के द्वारा आत्मा को परिपक्व बनाकर बाप समान बनाना। तो ये दो लक्ष्य लेकर आप लोग बाबा के घर में आए हैं। इसकी तो डबल मुबारक भी है। हम थोड़ा सा आपको दादी के साथ का अनुभव सुनाते हैं कि दादी ने क्या गुप्त पुरुषार्थ किया जिससे संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। क्योंकि दादी यज्ञ की प्रशासिका थी, पूरे विश्व की प्रशासिका थी, तो कितना उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। आप सबको अनुभव है कि आपके पास एक परिवार की जिम्मेदारी होती है, उसमें आप निसंकल्प होकर बाप को याद नहीं कर पाते हो। जिम्मेदारी का संकल्प चल जाता है और दादी के ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन दादी कैसे अपने को संपूर्ण बनाया। दादी जी को जैसे हम आप सभी बैठकर कभी इष्ट्रा योग करते, पुरुषार्थ करते, ये दादी को चांस नहीं मिलता था। बस सुबह शाम योग करते थे, मुरली सुनाते थे, बाकी यज्ञ की इतनी जिम्मेदारी थी कि दादी को फुर्सत नहीं थी कि बैठकर तपस्या करें। तो ये भी मुझ आत्मा का भाग्य था कि दादी के पास दादी जी का भोजन बनाना, चाय आदि देना, तो दादी के अंग संग रहने का चांस ज्यादा समय मिला। तो एक बार दादी जी से पूछा था कि दादी आप क्या पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि हमने आपको बैठ करके एक्स्ट्रा योग करते हुए नहीं देखा, तो आप पुरुषार्थ क्या करते हो। तो दादी जी ने अपना पुरुषार्थ बताया, बड़ा गुप्त पुरुषार्थ था दादी का। दादी ने बताया कि मैं सारे दिन के अंदर तीन बातों का ख्याल रखती हूँ, सारे दिन के अंदर कार्य व्यवहार करते हुए तीन बातों का ख्याल रखती हूँ। एक, जब किसी को कोई डायरेक्शन दे रही होती हूँ तो ये सदा स्मृति में मन में उसके कल्याण के प्रति भावना इमर्ज रहती है, सदा उसके लिए मन में कल्याण का संकल्प इमर्ज रहता है। इसलिए जो डायरेक्शन देती हूँ तुरंत सब मान लेते हैं और हमारा दुआओं का खाता जमा हो जाता है। दूसरी बात दादी ने बताया कि मैं सारा दिन अटेंशन देती हूँ कि हमारी कोई भी शक्ति वेस्ट ना जाए, शक्तियाँ जमा होती रहें। संकल्प की शक्ति है, बोल की शक्ति है, कुछ वेस्ट ना जाए, सब जमा होता रहे। इससे आत्मा शक्तिशाली बनती जाती। और तीसरा दादी ने बताया कि जब मैं डायरेक्शन दे रही होती हूँ तो 75% अपने लिए और 25% दूसरे के लिए, अर्थात जब मैं कोई कार्य कर रही हूँ, डायरेक्शन दे रही हूँ, तो 75% तक हम अपना मन बाबा में लगा के रखती हूँ। तो ये 75% हम अपने लिए रखती और 25% उनकी तरफ अटेंशन है। 75% अपना मन बाबा में लगा रहता है। इस कारण से आत्मा शक्तिशाली बनती है और बाबा की आशीर्वाद और दुआएं मिलती है। तो मैंने कहा ये तो बात ठीक है दादी, लेकिन जब आप योग कराते हो तो आपके यहाँ चमकने लगता है और ऐसे लगता है कि शक्तियों की किरणें निकल रही है। जिन्होंने देखा होगा, अनुभव होगा कि दादी के जैसे यहाँ से शक्ति की किरणें निकल रही है। तो मैंने कहा दादी, ये बिना अशरीरी हुए बिना ये स्थिति आ नहीं सकती, या जब आप मुरली सुनाते हो तो ऐसे लगता जैसे बाबा सुना रहा है। तो ये तो बिना अशरीरी हुए हो नहीं सकता। दादी आप अशरीरी होने का अभ्यास कब करते हो? क्योंकि मैंने बैठ करके योग करते हुए नहीं देखा। तब दादी ने बताया बहुत गुप्त पुरुषार्थ, शायद ही कोई ब्राह्मण करता होगा। दादी ने कहा सुबह जब मैं स्नान करने जाती हूँ तो वो एक घंटा मेरा अपना होता है, वहां कोई नहीं होता है, सिर्फ मैं, आत्मा और मेरा बाबा। कहती वो टाइम मेरा पर्सनल टाइम, और टाइम तो कोई न कोई साथ में होता है, ब्राह्मणी होती, कोई मिलने वाला होता, कोई होता है, लेकिन वो टाइम हमारा पर्सनल टाइम है, उस टाइम सिर्फ मैं, आत्मा और मेरा बाबा। वो टाइम हम टोटल अशरीरी होने के अभ्यास पर चलती। तो इतना दादी ने गुप्त पुरुषार्थ किया है, और वो समय सबके पास है जो दादी ने किया, चाहे कर्म करते हुए पुरुषार्थ किया, चाहे स्नान आदि करते समय पुरुषार्थ किया। तो यह दादी जी का गुप्त पुरुषार्थ साकार कर्म क्षेत्र पर बहुत मदद देता था। तो हम आप सब भी, और तो कोई कहे समय नहीं मिलता है, लेकिन ये जो दादी जी ने गुप्त पुरुषार्थ किया, ये तो सब कर सकते हैं। बोलते समय, किसी से बातचीत करते समय मन में बाबा की याद हो, उसके प्रति शुभ भावना हो, और कोई शक्तियां वेस्ट ना जाएं। यह कर्म करते हुए अटेंशन रखो। तो हम आप सब भी बहुत जल्दी दादी समान सो बाप समान बन जाएंगे। ये बहुत गुप्त पुरुषार्थ है जो दादी जी का मैंने प्रैक्टिकल में देखा। आप सभी आए हैं भट्टी करने के लिए। भट्टी का लक्ष्य ही है बाप समान बनना। भट्टी की चार स्टेजेस होती है, और चारों स्टेजेस से चार प्रकार की प्राप्तियां हैं। भट्टी अर्थात बाबा की याद ही है। तो चारों स्टेजेस हैं याद, योग, तपस्या और भट्टी। याद, योग, तपस्या और भट्टी, इन चारों से चार प्रकार की प्राप्तियां हैं। हमें सारे दिन में चारों में कुछ न कुछ करते रहना है। तो चारों से चार प्रकार की प्राप्तियां हैं। याद से आत्मा को सुख मिलता है। गायन है, सुमिर सुमिर सुख पाओ, कला कलेश मिटे तन का। याद से सुख मिलता है, योग से विकर्म विनाश होते हैं, योग से विकर्म विनाश होते हैं। तपस्या से राज्य मिलता है, तप से राज है, तपस्या से राज्य मिलता है, और भट्टी से परिपक्वता आती है। आत्मा बाप समान बनती है। जैसे देखो आप योग करते हो, बाबा को याद करते हो, अनुभव होता है सबको, लेकिन वो अनुभव स्थायी रह जाए वो अनुभव सदा काल का बन जाए उसके लिए है भट्टी, क्योंकि भट्टी में आत्मा परिपक्व हो जाती है। तो याद से आत्मा को सुख मिलता है। याद का आधार है बाप के साथ सर्व संबंध साकार में। याद का आधार है सर्व संबंध साकार में। तो आपकी निरंतर याद रह सकती है। इस याद से आपको डबल सुख मिलता है। गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। तो मात पिता है तो बच्चा होने के कारण सतयुगी स्वर्ग की बादशाही जन्म सिद्ध अधिकार है, जहां अथाह सुख होगा। तो एक सुख है स्वर्ग का, जो जन्म सिद्ध अधिकार है, मिलना ही है। लेकिन वो सुख मिलेगा जब आत्मा शरीर छोड़कर सतयुग में जाएगी तब। लेकिन दूसरा सुख है वर्तमान संगम युग पर भगवान के साथ सर्व संबंधों का सुख। जो गायन है अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपिकाओं से पूछो। ये गोपी वल्लभ की गोप गोपिकाएं अभी हम आप हैं। सतयुग में अति इंद्रिय सुख नहीं मिलेगा, वो सिर्फ संगम पर है। और उसका आधार है भगवान के साथ सर्व संबंध साकार में जोड़ो। प्रैक्टिकल में भगवान निराकार है, लेकिन संगम युग पर साकार बना है। अब निराकार होते हुए भी, आकार अव्यक्त होते हुए भी, संगम पर बच्चों के लिए साकार रूप में है। जैसे देखो, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को इतना याद किया कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को छोड़ के ऊपर जा ही नहीं पाता था, क्योंकि शिव बाबा का वायदा है कि जहां बच्चों ने याद किया वहां बाप हाजिर है। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को इतना याद करता था प्रतिपल, जो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से अलग हो ही नहीं पाता था। इसीलिए बाप दादा दोनों समान बन गए। बाप में दादा, दादा में बाप, दोनों हो गए बाप दादा। तो हम आप भी इतना बाबा को साकार रूप में याद करें कि बाबा हमसे एक पल भी अलग ना हो। उसका आधार है बाप के साथ प्रैक्टिकल में संबंध जोड़ो। प्रैक्टिकल में सिर्फ मन से नहीं कि बाबा आप हमारे माता पिता टीचर सब कुछ आप हो, मेरे बच्चे भी आप हो, सर्व संबंध आपसे है। मन से ये कह रहे हैं बाबा से और प्रैक्टिकल में निभा रहे हैं लौकिक से। साकार में निभा रहे हैं लौकिक से और मन से कह रहे हैं भगवान आप मेरे माता पिता हो। अब प्रैक्टिकल में साकार का एक अनुभव बताते हैं कि साकार में भगवान को कैसे अपने साथ रखो। जैसे देखो आपका लौकिक बच्चा है, आपका बच्चे के साथ प्रैक्टिकल में संबंध है, सिर्फ संकल्प से नहीं है, प्रैक्टिकल में है। प्रैक्टिकल में अर्थात बच्चे को जो कुछ चाहिए वो आप देते हो, उसके साथ माँ बाप बनकर उसको प्यार देते हो, जिस चीज की आवश्यकता होती है यथाशक्ति देते हो। क्या यही रूप शिव बाबा के साथ है? उदाहरण के रूप से मान लो आपने स्कूल में बच्चे के लिए फीस दिया 100 रुपया जो कुछ भी है। जब स्कूल में बच्चे के लिए फीस दिया, क्या उस समय आपको ये संकल्प आया कि शिव बाबा भी हमारा बेटा है, इस फीस में उसका भी हिस्सा है? उसका हिस्सा निकाला? अगर उसका हिस्सा नहीं निकाला, प्रैक्टिकल में आपने लौकिक बच्चे के साथ निभाया, तो याद किसकी आएगी? क्या शिव बाबा की याद आ सकती है? नहीं ना। तो प्रैक्टिकल का अर्थ है जैसे लौकिक बच्चे के लिए आपने फीस निकाली, उसमें थोड़ा सा हिस्सा पहले शिव बाबा के लिए निकाल दो, आप करके देखो। उदाहरण के रूप में आप यहां से अभी अपने घर जाएंगे, जब वापस जाएंगे तो आपके मन में ये संकल्प जरूर आएगा कि यहां से कुछ न कुछ ऐसी चीज ले जाएं, परिवार को दें, बच्चे को, जिसको भी, कुछ यहां का यादगार ले जाएं। आपने सब सामान खरीदा, लेकिन एक सामान किसी के लिए स्पेशल खरीदो, परिवार में किसी के लिए भी, तो जब तक वो सामान आपके हाथ में रहेगा, वो सामान देख करके जिसके लिए खरीदा है उसकी याद आती रहेगी या नहीं? बोलो पांडव, आएगी ना माताएं? ऐसे अगर आप पहले बाबा का हिस्सा निकाल दो, वो जब तक आप सेंटर पर ले जा करके नहीं दे दोगे, तब तक वो देखकर बाबा की याद आती रहेगी या नहीं? रहेगी ना। इससे सहज साधन कुछ है? आप सब्जी लेने जाते हो, थोड़ा सा हिस्सा बाबा का निकाल दो। वो जब तक सेंटर पर लाकर नहीं दोगे, तब तक वो देख देख कर बाबा की याद आती रहेगी। ऐसे जो कुछ भी करो, सबसे पहले बाबा का हिस्सा निकालो। पहले बाबा, बोलो माताएं, पहले बाबा, भाई लोग, पहले बाबा। तो पहला हिस्सा अगर बाबा का निकाल दिया, तो फिर बाबा आपको भूल नहीं सकता। करके देखो। दूसरी बात, आप बाबा को साकार में साथ रखो। जैसे जब आप यहां क्लास में आए और बैठे आप चेयर पर, सोफा सेट पर, पट पर, कहीं पर भी बैठे, तो सीधा बैठ नहीं जाओ। एक सेकंड लगेगा, जब आप आते हो तुरंत बाबा का आवाहन करो, बाबा आप आ जाओ, आप इस चेयर पर बैठो, हम भी आपके साथ बैठेंगे। आवाहन करो बाबा का, फिर आप बैठो। अभी क्लास से उठोगे, ऐसे नहीं उठ जाओ, बोलो बाबा क्लास पूरा हुआ, अब आप चलें, आपके साथ हम भी चलेंगे। पहले बाबा को उठाओ, और जब चलो तो अकेले नहीं चलो, चाहे माँ बाप बन के बाबा की उंगली, बच्चा बना के उंगली पकड़ लो, चाहे बच्चा बन करके बाबा की उंगली पकड़ लो, साथ साथ साकार में चलो। माताएं भोजन बना रही हैं, भोजन बनाने जाओ, पहले बाबा का आवाहन करो, बाबा आप इस किचन में आ जाओ, मेरे साथ साथ भोजन बनाओ। मीठे बाबा, हम आपके लिए भोग बना रहे हैं, बाबा आप ये भोग स्वीकार करना, बाबा मेरे साथ साथ रहना। ऐसे बाबा का आवाहन करो, इसका यादगार भक्ति मार्ग में है कि जब कोई भी कार्य करते हैं तो पहले देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उसके बाद फिर पूजा पाठ विधि करते, आवाहन करते हैं। वो होवनहार देवी देवताएं यही हैं। तो जब आपने किया है तब आपका यादगार बना है। सोने जाओ, ऐसे नहीं बिस्तर पर बैठो, चार्ट दिया और सो जाओ, नहीं। सोने जाते हो, पहले बिस्तर के आगे खड़े होकर बाबा का आवाहन करो, मीठे बाबा आपके लिए बिस्तर लगा दिया है, अब आप आ जाइए, आप बिस्तर पर सो जाइए, हम भी आपके साथ साथ आपकी गोद में सो जाएंगे। आवाहन करो, अनुभव होगा बाबा आया है, बिस्तर पर बाबा को साथ लेकर सो, देखो आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, नाचते रहोगे खुशी में, क्योंकि प्रतिपल बाबा साथ का अनुभव कराता रहेगा। कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, उठो बैठो, आवाहन करो, सिर्फ मन को आदत डाल दो। खाना खाने जाते हो सीधा भोग नहीं लगाओ, पहले बाबा का आवाहन करके फिर भोग लगाओ। बाबा आप आइए, आपके लिए भोजन तैयार रखा है। फिर बाबा को सूक्ष्म वतन में जहां भी जाके भोग लगाओ, लेकिन पहले आवाहन करो। आवाहन करने की अगर आदत पड़ गई, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, फिर आपको बाबा की याद भूलेगी नहीं। और जब बाबा की याद नहीं भूली, तब सेकंड स्टेज है योग। योग का आधार है आत्मक स्वरूप में टिकना। बिना आत्मक स्वरूप में टिके शिव बाबा से कनेक्शन जुट नहीं पाएगा। तो जब आपका मन सब तरफ से हट गया है, याद के अभ्यास से बाबा 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 हो गया है, फिर आपका अशरीरी होना सहज हो जाएगा, क्योंकि और तरफ मन नहीं जाएगा। फिर अशरीरी हो करके बाप को याद करो। तो योग से प्राप्ति है, आपके विक्रम विनाश होंगे। आप 7:30 बजे तक योग चला, जो जितनी देर योग किया होगा आपको पता पड़ा कि मुझ आत्मा के विक्रम विनाश हुए हैं और कितने परसेंट विनाश हुए हैं। आप योग में बैठे थे, जितनी देर भी बैठे, योग में आपके विक्रम विनाश हुए ये आपको पता पड़ा, और कितने परसेंट हुए, क्या आपको अनुभूति हुई, जिससे आप समझो कि मुझ आत्मा के विक्रम विनाश हुए हैं। क्या थर्मामीटर है कि आपका योग में विक्रम विनाश हुआ है? कभी सोचा या इसको सोचने की जरूरत ही नहीं समझा? हमारा काम है योग करना, बाकी बाबा जाने, बाबा का काम जाने, ऐसा तो नहीं सोचते हो? बाबा जाने वो तो राइट है, लेकिन विक्रम किसने किया है? हमने किया है ना। नाश किसको करना है? हमें ही करना है ना। तो हमको भी तो जानना चाहिए कितना नाश किया है, कितना बाकी है। तो कैसे आपको पता पड़ेगा कि मुझ आत्मा के विक्रम विनाश हुए हैं? अच्छा, उसकी निशानी है। अगर आपका योग में विक्रम विनाश हुआ है, उसकी निशानी है। पहली निशानी है कि जब आप योग पूरा करेंगे, जितनी देर भी बैठे थे, योग पूरा करने के बाद आपके मन में एक ही संकल्प आएगा, वो संकल्प होगा कि और बाबा को याद करें, और बाबा को याद करें, और बाबा को याद करें। बाबा बहुत मीठा लगेगा, ना बोलने का मन कहेगा, ना इधर उधर देखने का मन कहेगा, ना उठने का मन करेगा, बस एक ही संकल्प आएगा, और बाबा को याद करें, और बाबा को याद करें। तो जितना ज्यादा मन की खींच बाबा के साथ हो रही है, उतना ज्यादा आपके विकर्म विनाश हुए हैं। जैसे जितना लोहे से जंक उतरता है, उतना चुंबक उसे खींचता है। तो जितना आत्मा से जंक उतरेगी, उतना चुंबक बाबा खींचेगा। ये निशानी है बेकर्म विनाश होने की। अगर खैच नहीं हो रही है तो भले कितनी देर भी बैठे थे, लेकिन आपके बेकर्म विनाश नहीं हुए। अब योग में किस स्टेज में आपके बेकर्म विनाश होंगे? योग में भी जब आत्मा इस शरीर से डिटैच होकर थोड़ी देर कंटिन्यू अगर एक बाबा की याद में स्थिर रह जाए और कोई संकल्प ना आए, बस आप आत्मा और परम आत्मा, बस थोड़ी देर कंटिन्यू इसी एक संकल्प में एकाग्र रहो, तब परमात्म शक्ति, परमात्म संग का रंग आत्मा को परमात्मा के समान प्योर बना देगा। संग का रंग अवश्य लगता है, लेकिन जब कुछ देर कंटिन्यू एकाग्र रहो, तब जैसे देखो सोना है, सोने से खाद निकालनी होती है, अलाय निकालनी होती है, तो सोना और आग दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। जब थोड़ी देर आग के अंदर सोना पड़ा रहता है, तब आग की गर्मी से सोना पिघलता है और कीचड़ा जल जाता है। अगर आप सोने को आग के आगे ले जाओ, ऐसे आग को टच करके वापस ले आओ, ऐसे कितना समय भी करते रहो, लेकिन उसकी खाद नहीं निकलेगी। ऐसे आप आत्मा पुरुषार्थ करके बाबा के पास पहुंचे और इतने में कोई संकल्प आ गया, फिर नीचे आ गए, फिर पुरुषार्थ करके ऊपर जाओ। अगर ऐसे कितना समय करते रहो आपके विकर्म विनाश नहीं होंगे। जब तक आत्मा थोड़ी देर तक लगातार एक संकल्प में बाबा के साथ एकाग्र ना रहे तब तक। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर 5 मिनट कोई कंटिन्यू निराकारी स्टेज में बाप के साथ एकाग्र हो जाए तो एक जन्म का पाप नाश हो जाता है। एक जन्म, इतनी तेज आग है ये। आप मुरली में सुनते हैं बाबा कहता कोई 24 घंटा मुझे निरंतर याद कर ले तो कर्मातीत बन जाएगा, लेकिन वो निरंतर वाली याद, टूटने वाली याद नहीं। तो योग से विकर्म विनाश होते। और तीसरा है तपस्या। तपस्या से राज्य मिलता है, तपस्या से राज्य मिलता है। तपस्वी कहां तपस्या करते? योगी गुफा में रहते हैं, सन्यासी कुटिया में रहते हैं, और तपस्वी कहां तपस्या करते हैं? तपस्वी झाड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते। आप भी तपस्या में या तो मास्टर रचिता बन कल्प वृक्ष के नीचे झाड़ में बैठकर पूरे विश्व की सर्व आत्माओं की पालना करो, सुख से, शांति से, प्रेम से, आनंद से, सर्व किरणें झाड़ के नीचे बैठकर विश्व कल्याणकारी की स्टेज में स्थित होकर पूरे विश्व की सर्व आत्माओं की पालना करो। जब आपकी किरणों के द्वारा जिस आत्मा को कुछ न कुछ अनुभव होगा वही आपको राजा माने। जब तक आपके द्वारा प्राप्ति नहीं हुई है तब तक वो राजा नहीं मानेगी। विश्व का राज्य लेना है तो विश्व की सर्व आत्माओं की पालना करना है। तो या तो कल्प वृक्ष में जड़ के नीचे बैठकर सर्व की पालना करो, या कल्प वृक्ष के ऊपर भगवान के साथ साथ पूरे सृष्टि को सकाश दो, सर्च लाइट दो, जिससे विकर्म विकार सब भस्म हो जाए और सृष्टि पावन बन जाए। या तो आप ऊपर बैठकर सकाश दो या कल्प वृक्ष में जड़ में बैठकर आप पालना करो। ये तपस्या का आपका रूप होना चाहिए, तब आपको विश्व का राज मिलेगा। और चौथा है भट्टी अर्थात परिपक्वता। जब आत्मा भट्टी में पड़ती है तो परिपक्व हो जाती है। जैसे देखो ईटा है, जानते होंगे जब ईंट कच्ची है, पकाई नहीं है, तो अगर पानी पड़े तो वो ईंट पिघल जाएगी, मतलब मिट्टी में मिल जाएगी। और जब वही ईंट पक जाती है तो पानी को अंदर नहीं आने देती, इतना रूप बदल जाता है। जब तक पकी नहीं थी, कच्ची थी, पानी ईंट को खत्म कर देता। सीमेंट की बनाओ, कच्ची गीली में बरसात हो जाए बह जाएगी, मिट्टी का बनाओ बह जाएगी। लेकिन वही जब पक जाती है तो इतना उसमें शक्ति आ जाती है कि पानी को अपने अंदर नहीं आने देती। जो पानी उसको गला देता था उस पानी को अंदर नहीं आने देती। तो भट्टी अर्थात आत्मा इतनी परिपक्व बन जाती है कि अपना प्रभाव दूसरे पर डालती है, दूसरे का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ सकता। तो भट्टी की चार स्टेजेस हैं। भट्टी भी पांच प्रकार की भट्टी है और पांचों प्रकार की भट्टी हमें करते ही रहना है। कोई कब पांचों भट्टी है। पहला है लोहार की भट्टी, दूसरा है ईंटों की भट्टी, चौथा तीसरा है सोनार की भट्टी, चौथा है धोबी की भट्टी और पांचवा है ज्ञान योग की भट्टी। ये पांचों भट्टी हमें करते रहना है। पहली भट्टी है लोहार की भट्टी। आप देखेंगे लोहे की दो विशेषता होती, एक लोहा काला होता है, दूसरा लोहा बहुत हार्ड होता है। तो आत्मा भी द्वापर युग से विकारों के बस होने के कारण एकदम काली और इतनी हार्ड हो गई है कि संस्कार बदली ही नहीं हो रहे। एकदम काली और हार्ड संस्कार वाली बन गई। अब अगर लोहे को आपको ढाल कर कुछ लोहे को बनाना है तो लोहे को बहुत तेज आग की जरूरत पड़ती, बहुत तेज आग, तब लोहा पिघलता है और सांचे में ढाल कर कुछ बना सकते हो। इसलिए जो आत्मा कोयले से काली, लोहे से भी काली, और लोहे जितना हार्ड है इसको बहुत तेज आग की आवश्यकता है। अर्थात आत्मा समझकर निराकार परमात्मा को समान रूप की स्थिति में स्थित होकर याद करना, जिसको कहा जाता है ज्वालामुखी योग। समानता की स्थिति में। ऐसे हम जनरल योग करते हैं, बाबा आप शांति के सागर हो, आपसे शांति की किरणें आ रही हैं, मुझ आत्मा के द्वारा चारों तरफ फैल रही। ये है जनरल योग करना याद करना। ज्वालामुखी योग अर्थात बाबा आप शांति के सागर हो तो मैं आत्मा आप समान मास्टर शांति का सागर हूं। मास्टर बनकर समान रूप से बाबा से मिलना, समान रूप की स्थिति में स्थित होकर मिलना। जब ऐसी प्रैक्टिस करो तब आपके पुराने संस्कार चेंज हो जाएं। एक साल पहले बाबा ने ये मुरली में कहा था, बिना ज्वालामुखी योग के पुराने संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। तो इसके लिए चाहिए ज्वालामुखी योग। दूसरा है ईंटों की भट्टी। जिसने देखा होगा ईंटों की भट्टी को, जिसको भट्ठा कहते हैं, उसमें एक बार आग नहीं जलाते, हफ्ता 10 दिन तक बार बार कोयला या डालते रहते हैं, अग्नि को प्रज्वलित रखते हैं, तब जा करके ईंट पकती है। सिर्फ एक बार आग डालने से नहीं होती। तो आपको भी अगर अपनी स्थिति पक्की बनानी है, जो कोई प्रभाव न पड़े, उसके लिए बार 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 आपको अभ्यास करना पड़ेगा। बार बार याद की अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं सुबह योग कर लिया, शाम को योग कर लिया, नहीं। आपको दिन में भी कई बार इसका अभ्यास करना पड़ेगा। आत्मा का निरंतर कनेक्शन परमात्मा से जुटा रहे, निरंतर अग्नि मिलती रहे, तब आत्मा के विकार जल जाएंगे, आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में पक के स्थित हो जाएगी। तीसरा है सोनार की भट्टी। सोनार की भट्टी अर्थात दिव्य गुणों का जेवर। जब तक आपके पास दिव्य गुण नहीं हैं, तब तक योग लग नहीं सकता। अगर किसी को दुख दे दिया, तेज शब्द बोल दिया, और सोचो मेरा योग लग जाए, सवाल ही नहीं। तो दिव्य गुणों की धारणा बहुत आवश्यक है। जब दिव्य गुण आप में आए, दिव्य गुणों का गहना धारण करके रखो, तब आपका योग लगे। चौथा है धोबी की भट्टी। धोबी अर्थात इन तीन भट्टियों में डायरेक्ट आग का कनेक्शन है। शिव बाबा को डायरेक्ट याद करो। धोबी की भट्टी में डायरेक्ट नहीं है। अगर कपड़े में डायरेक्ट आग रख दें तो कपड़ा ही जल जाए, इनडायरेक्ट है। अर्थात बाप और दादा दोनों की याद, जैसे धोबी में कपड़ा धुलाई करने से एकदम साफ बन जाता है, तो धोबी घाट की भट्टी अर्थात ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहना, धोबी घाट की भट्टी अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करना, जो संकल्प करो चेक करो ब्रह्मा बाप के समान है, बोल बोलो चेक करो ब्रह्मा बाप के समान है, कर्म करो चेक करो ब्रह्मा बाप समान है, अर्थात ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता की स्थिति में मैं आत्मा लाइट के कार्ब में बैठी हुई फरिश्ता हूं, धोबी घाट की भट्टी। और पांचवा है ज्ञान योग की भट्टी, ज्ञान को भी धारण करो, योग जैसे बताया अभ्यास करो, तो आत्मा की परिपक्व अवस्था आ जाएगी और आप आत्मा बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।
तप कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है, तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है, योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता, तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। माया ही जीवन को बनाए, फरिश्ता प्रभु से जुटाए, हर संबंधों का रिश्ता संबंधों का रिश्ता, तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।